पूर्व पाठ में आत्मा का लक्षण बताया गया था कि आत्मा कैसी होती है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा। उसमें लास्ट में आया था कि स्वच मानस प्रत्यक्ष, कि आत्मा का जो है मानस प्रत्यक्ष होता है, मन के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, मन के द्वारा उसको जो है जाना जाता है। इसका तात्पर्य ये निकला ना कि आँख से उसको नहीं जाना जाएगा, कान से नहीं जाना जाएगा, नाक से नहीं जाना जाएगा, वो उसका जो है मानस प्रत्यक्ष होता है, उसका श्रावण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका जो है चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। अब मैंने पिछले पाठ में बताया था कि ये आत्मा जो है वो किसको माना जाए, इसके बारे में बहुत विवाद है। कोई शरीर को ही आत्मा कहते हैं, कोई इंद्रिय को कहते हैं, तो कोई मन को कहते हैं, इस तरह से विप्रतिपत्ति बहुत है। विप्रतिपत्ति मतलब होता है प्रतिपत्ति माने ज्ञान, और विप्रतिपत्ति मतलब विरुद्ध ज्ञान है। जबकि शरीर इंद्रिय मन ये आत्मा नहीं कहलाती है, आत्मा जो है इन सबों से भिन्न है, इन सबों से अलग वस्तु है। किंतु देह इंद्रिय आदि को ही आत्मा समझने वाले जो लोग हैं उनको क्या प्रतिपत्ति नहीं है, उनके पास क्या है विप्रतिपत्ति है, मतलब विरुद्ध ज्ञान है। तो ऐसे जो विरुद्ध ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, जो कि देह इंद्रिय आदि को ही जो है आत्मा मानने के लिए तुले हुए हैं, ऐसे विप्रतिपत्ति वाले व्यक्ति के लिए फिर जो है ना कुछ तो उपाय सोचना होगा उनको मनवाने के लिए कि भैया आपको भी मानना चाहिए कि आत्मा जो है ना देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है। तो ये आप कैसे उनको सिद्ध करके दिखाएंगे? अच्छा, उसका प्रत्यक्ष भी होता है तो मानस प्रत्यक्ष होता है, तो अब हम मेरे मानस में प्रत्यक्ष होगा, मेरा मानस प्रत्यक्ष होगा, उससे उसको कैसे जो है आभास होगा, वो कैसे उसको मानेगा अपनी बात को? तो उसको मनवाने के लिए विप्रतिपत्ति वाले विरुद्ध ज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं उनको मनवाने के लिए क्या उपाय है? वो इस बात को स्वीकार कर ले, मजबूर हो जाए बल्कि स्वीकार करने के लिए कि हाँ जी आत्मा कोई अलग चीज़ है, देह इंद्रिय से अलग है। इसको कैसे मनवाया जाएगा? तो एक औजार है अपने पास, और वह औजार क्या है? तो अनुमान है। अनुमान प्रमाण के आधार पर हम इस विप्रतिपत्ति वाले व्यक्ति को भी मजबूर कर देंगे कि मानने के लिए कि आत्मा जो है देह इंद्रिय आदि से अलग है। तो ऐसे विप्रतिपत्ति वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या है अपने पास औजार? अनुमान प्रमाण औजार है। यही बात यहाँ पंक्ति में कहते हैं कि विप्रतिपत्तो तु, अगर विप्रतिपत्ति हो गई है, विरुद्ध ज्ञान हो गया है, शरीर इंद्रिय को ही जो है अगर आपने आत्मा मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि आदि गुण लिंगक, बुद्धि आदि गुण लिंगक प्रमाण के आधार पर जो है वहाँ पर सिद्ध करना होगा कि आत्मा जो है देह इंद्रिय आदि से अलग वस्तु है। अब ये जो इन्होंने कहा कि बुद्धि आदि गुण लिंगक अनुमान से सिद्ध करना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पर ये बुद्धि आदि, बुद्धि तो बुद्धि हुई, और ये जो यहाँ पर बुद्धि आदि कहा है ना, इस आदि से हम ले लेंगे सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। क्या क्या लेना है? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। हम इन्हीं को इसलिए ले रहे हैं कि ये सब जो है ना ऐसे विशेष गुण हैं जो आत्मा में ही रहते हैं। ये सारे गुण न शरीर में रहते हैं, न इंद्रिय में रहते हैं, न मन में रहते हैं, ये सारे गुण कहाँ रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। तो इसीलिए हम बुद्धि आदि के द्वारा हम आदि से सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न इनको हम पकड़ेंगे। तो बुद्धि आदि गुण, अच्छा ये सब क्या है? बुद्धि आदि माने बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये क्या है? तो ये गुण है। और गुण की एक खासियत क्या है कि गुण हमेशा जो है ना किसी न किसी द्रव्य में रहने वाला पदार्थ है। गुण जो भी होता है वह द्रव्याश्रित ही होता है, गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे नीलत्व गुण जो है वह किस में रहेगा? नील घट में रहेगा। ये पीतत्व गुण जो है वह किस में रहेगा? तो पीत पुष्प में रहेगा। तो वो पीत पुष्प नील घट ये क्या है, द्रव्य है। अब आप देखिए कि बिना पीला वस्त्र जो होगा उसमें पीला गुण रहेगा, पीला रूप रहेगा। बिना वस्त्र का पीला रह सकता है क्या? अगर फूल लाल है, फूल न रहे तो वो लाल वहाँ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो गुण जो है वह हमेशा किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होता है, किसी न किसी द्रव्य में ही वह निहित होता है, किसी न किसी द्रव्य में ही रहता है। अब ये गुण जो है वो तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं गुणों को यहाँ पकड़ेंगे अनुमान के समय में जो गुण की केवल आत्मा में ही रहते हों और किसी द्रव्य में न रहते हों। आत्मा भी एक द्रव्य है और द्रव्य जो है ना वो 9 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, ठीक है। और जितने और चतुर्विंशति गुणाः और 24 प्रकार के गुण होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, उसमें 24 गुण हैं, वो भी कहीं आएगा ही। तो ये जो 24 गुण हैं, ये 24 गुण कहाँ रहेंगे? बिना द्रव्य के रह नहीं सकते, किसी न किसी द्रव्य में ही रहेंगे। और ये 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं, कुछ गुण हैं जो पृथ्वी में रहते हैं, कुछ गुण हैं जो जल में रहते हैं, कुछ गुण है जो तेज में रहते हैं। तो इस तरह से जो भी गुण होता है वह द्रव्याश्रित ही होता है। इसीलिए द्रव्य का एक लक्षण बताया जाता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहते हैं गुणाश्रयो द्रव्यम, कि गुण का जो आश्रय हो वही द्रव्य कहलाता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गुण का आश्रय जो है वह कोई न कोई द्रव्य ही होता है, और वह जो द्रव्य होगा वो 9 द्रव्यों में से कोई द्रव्य होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें 24 गुणों में से केवल इन्हीं गुणों को पकड़ना है जो कि आत्मा में रहने वाले गुण हैं। किनको? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो ये जो बुद्धि आदि गुण हैं, इन गुणों को हम क्या करेंगे, लिंग बना करके अनुमान करेंगे, और इससे हम सिद्ध करेंगे कि चूंकि देखिए ऐसा है कि बुद्धि, सुख, दुख इत्यादि जो है ये गुण हैं, और ये गुण हैं तो ये कहीं ना कहीं तो रहेंगे, किसी द्रव्य में रहेंगे। तो किसी द्रव्य में रहेंगे तो वो पृथ्वी, तेज, जल आदि द्रव्य में रह नहीं सकते, तो केवल आत्मा ही ऐसा द्रव्य है जिसमें कि ये सारे गुण रह सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बुद्धि आदि को जो है ना गुण सिद्ध करेंगे, और जब बुद्धि आदि गुण सिद्ध हो जाएगा फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि ये पृथ्वी, जल, तेज आदि द्रव्य में नहीं रहते हैं। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ये पृथ्वी, जल, तेज से अलग जो एक आत्मा नाम का द्रव्य है उस द्रव्य में ये रहता है। तो इसी अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर विप्रतिपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उनको समझाना है हमें कि आत्मा जो है होती है, और इस आत्मा, यह जो आत्मा है यह देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है और मन नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया कि विप्रतिपत्तो तो बुद्ध्यादि गुण लिंग कहा, माने जिस जब विप्रतिपत्ति हो गई हो किसी को तो उनके लिए बुद्धि आदि गुण को लिंग बना करके, लिंग मतलब आधार बना करके हम वहाँ पर अनुमान करेंगे, और अनुमान के द्वारा उसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे तो उसका अनुमान का स्वरूप कैसा होगा, तो आगे बताते हैं कि तथा ही बुद्ध्यादयः तावद् गुणाः, कि बुद्धि आदि जो हैं ये गुण होते हैं। मैंने कई बार बता दिया आदि शब्द से सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न को लेना है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये पक्ष हुआ बुद्ध्यादयः तावद् गुणाः अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत्। इसमें बुद्ध्यादयः ये हो गया पक्ष, गुणाः ये हो गया साध्य, अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् ये क्या हो गया आपका हेतु, और रूपवत् ये हो गया उदाहरण। इस चीज को आप जानते भी हैं और इसको डिटेल्स में आगे बताएंगे। तो चलिए अभी इसका केवल सामान्य मतलब समझें कि बुद्धि आदि तावत गुणा, माने बुद्धि आदि जो होते हैं ये गुण होते हैं। क्यों गुण होते हैं जी? तो अनित्यत्वे सति, क्योंकि ये गुण, ये बुद्धि आदि जो हैं ये अनित्य हैं, और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् और एक ही इंद्रिय से इसका ग्रहण होता है। जैसे रूप का ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय से होता है, अन्य इंद्रिय से नहीं होता। शब्द का ग्रहण केवल क्या कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही होता है, अन्य इंद्रिय से नहीं होता। तो जो एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होता है वह गुण होता है, इसीलिए रूप को गुण कहते हैं क्योंकि एक इंद्रिय से मात्र से ग्राह्य होता है। शब्द को गुण कहते हैं क्योंकि वह भी एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य होता है। तो बुद्धि आदि जो हैं ये भी गुण हैं, क्योंकि इसमें गुण का जो लक्षण है, गुण के दो लक्षण, एक अनित्यत्व होना और दूसरा एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व होना। तो इन बुद्धि आदियों आदि में ये दोनों हैं, अनित्यत्व भी है और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व भी है, इसीलिए बुद्धियादयः गुणाः, इसलिए बुद्धि आदि जो है ये गुण है। अब उदाहरण में दिया रूपवत, रूप की तरह, जैसे रूप जो है वह अनित्य होता है, आपने देखा ही है। जैसे केला है तो पहले हरा रहता है, उसमें हरित रूप रहता है, और जब वह पक जाता है तो उसमें पीत रूप उत्पन्न होता है, और जब वह और ज़्यादा दिन पुराना हो जाता है तो फिर उसमें कृष्ण रूप होता है। तो रूप जो है ना वह क्या अनित्य होता ही है, और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होता है। रूप जो है किस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, किस इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है, तो चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण होता है। तो जैसे रूप अनित्य होने के कारण और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होने के कारण रूप गुण कहलाता है, उसी तरह से बुद्धि आदि जो है वो भी अनित्य होने के कारण और एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होने के कारण गुण होते हैं। इस अनुमान के आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया कि बुद्धि आदि जो है वह गुण है, ये सिद्ध हो गया। अब जब ये सिद्ध हो गया कि गुण है, तो इसका मतलब है कि अब गुण सिद्ध हो गया तो गुण जो है बिना द्रव्य के तो रह नहीं सकता, उसके लिए तो कोई द्रव्य चाहिए ना, जिस द्रव्य में वह गुण आश्रित होकर के रहेगा, जिस द्रव्य में जाकर के गुण बैठेगा, तो वह द्रव्य जो है वह कोई न कोई द्रव्य तो होगा जिसमें बुद्धि आदि गुण बैठेगा, वही कहते हैं गुणश्च गुणी आश्रित एव। और ये गुण जो है बुद्धि आदि गुण ये गुणी पर ही आश्रित होते हैं, बिना गुणी के आश्रय से ये रह नहीं सकते। और वह जो गुणी है, वह गुणी कौन है, तो वह आत्मा नाम का ही द्रव्य है जिसमें ये रहते हैं। तो जो विप्रतिपन्न बुद्धि वाले हैं उनको हम यही कहेंगे कि ऐसा है कि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये क्या है कि गुण है, और गुण है तो गुण होने का मतलब है कि वो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा, तो वो जिस द्रव्य में रहता है वही उसी द्रव्य का नाम है आत्मा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो अनुमान वाक्य है इसके बारे में बता दूं कि बुद्धि आदि गुण है, ये जो कहा ना इन्होंने कि बुद्धियादयो गुणा, ये जो है ये प्रतिज्ञा वाक्य है, ये जो पंचावयव वाक्य होता है ना अनुमान में, उसमें एक प्रतिज्ञा वाक्य होता है। तो बुद्धियादयो गुणाः, ये क्या है, प्रतिज्ञा वाक्य है। और आगे जो कहा गया कि अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, ये क्या है, ये इसमें हेतु वाक्य है, ठीक है। और उदाहरण में जो है जो कहा कि रूपवत, ये उदाहरण है, रूप तो रूप को एक को ही लिया, इसमें रस को भी लिया जा सकता है, गंध को भी लिया जा सकता है, स्पर्श को भी लिया जा सकता है, शब्द को भी लिया जा सकता है। जो जो एक इंद्रिय से ग्राह्य है, ये पांचों जो है एक इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, रूप चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य होता है, रस जिह्वेंद्रिय या रसनेन्द्रिय ग्राह्य होता है, गंध जो है घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य होता है, स्पर्श जो है वह त्वगेन्द्रिय ग्राह्य होता है, और शब्द जो है वह श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य होता है। ये सब के सब एक इंद्रिय मात्र से ही ग्राह्य हैं। तो जो भी एक इंद्रिय से ग्राह्य गुण हैं उनको हम उदाहरण में रख सकते हैं। और इसके बाद ये जो अनित्यत्व सति एकेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत, ये जो कहा गया इसमें रूपवत जो है यह उदाहरण हो गया, ठीक है। और इसमें उपनय क्या होगा, तो उपनय होगा कि जिस प्रकार रूप आदि अनित्य होते हुए क्रम से चक्षु रसना घ्राण त्वक और श्रोत्र रूप एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य हैं, उसी प्रकार बुद्धि आदि भी जो है अनित्य होते हुए मन रूप एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है। बिल्कुल सही। अब ये तो संदेह होगा ना कि ये जो बुद्धि आदि जो है वह किस इंद्रिय से ग्राह्य होगा, तो वह चक्षु रसना घ्राण त्वक स्रोत से ग्राह्य नहीं होता बुद्धि आदि। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये जो पांचों हैं छह हैं, इन छह का जो ग्रहण होता है वो चक्षु रसना आदि से नहीं ग्रहण होता है, किससे होता है, मन रूप एक इंद्रिय से ही इसका ग्रहण होता है। तो जैसे रूप रस आदि जो है अनित्य है और एक इंद्रिय से ग्राह्य होता है, उसी तरह से बुद्धि आदि भी जो है अनित्य है और एक इंद्रिय से ग्राह्य होता है, ये हो गया उपनय। और फिर निगमन क्या होगा कि इसलिए जैसे रूप आदि गुण है उसी प्रकार बुद्धि आदि भी गुण है, ऐसा कहने ये जो कहना है इसी को कहते हैं निगमन। तो इस अनुमान वाक्य में हम जो पंचावय वाक्य होता है उसमें एक प्रतिज्ञा वाक्य, उसमें एक हेतु वाक्य, फिर उदाहरण वाक्य, फिर उपनय वाक्य और फिर निगमन वाक्य, इन पांचों वाक्यों का जो है हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। प्रतिज्ञा उसमें क्लियर है बुद्ध्यादयः गुणाः, फिर हेतु भी क्लियर है अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, उदाहरण भी क्लियर है रूपवत्, केवल उपनय और निगमन जो है इन्होंने ग्रंथ में नहीं लिखा है, जिसको मैंने बताया उपनय में ये कहा कि जैसे रूप रस आदि जो है अनित्य होते हुए एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होते हैं, उसी तरह से बुद्धि आदि भी जो है अनित्य होते हुए एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य है, ये हो गया उपनय। और निगमन होगा कि जैसे रूप आदि गुण होते हैं वैसे बुद्धि आदि भी गुण होते हैं। तो इस तरह से पंचावयव वाक्य का प्रयोग करके विप्रतिपन्न बुद्धि वाले को जो है हमें बताना पड़ेगा कि ये आत्मा जो है वह शरीर मन और मन या इंद्रिय रूप नहीं होता, इससे अलग होता है। तो आज का पाठ इसी अनुमान वाक्य पर ख़त्म करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।